नमस्कार दर्शकों, महाशिवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन है। हमें आशा है कि आप हमारे इस चैट शो से, जिसका नाम है अंतर के पटखोल, काफी लाभान्वित हो रहे होंगे। यूं तो हर एपिसोड के अंदर हम कोई न कोई कथा को लेते हैं और उसके आध्यात्मिक रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं, परंतु आज जिन बातों को लेकर हम उपस्थित हुए हैं वह संबंध रखती है शिवरात्रि में किए जाने वाले कर्म कांडों से, जैसे कि शिव निराकार शिव के ऊपर जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, अख के फूल चढ़ाना या बेलपत्र चढ़ाना। लेकिन इन सब बातों के पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य है? और ये आध्यात्मिक रहस्य जानना हमारे लिए इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि शिव भक्त होने के नाते अगर हम शिव की सच्ची पूजा करना चाहते हैं तो हमें सत्य का पता होना अति आवश्यक है। और हमारे इस शुभ कार्य में हमारी सहयोगी फिर से बन रही हैं ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे स्टूडियो में।
ओम शांति
जी। तो बहन जी, आज की परिस्थितियों में जिस प्रकार से महाशिवरात्रि पर्व को मनाया जाता है तो देखने में वो सिर्फ एक कर्म कांड का स्वरूप रह गया है। जैसे कि सुबह से जो शिव भक्त होते हैं वे अपने समय पर ब्रह्म मुहूर्त वेला में उठते हैं, अमृत वेला में उठते हैं और स्नान करते हैं और शिव के जो मंदिर है उसमें लाइन लगाने चले जाते हैं और जो उनकी श्रद्धा है या जो वो चढ़ाना चाहते हैं उस हिसाब से उसे चढ़ाते हैं और महाशिव पुराण की कथा भी सुनते होंगे और कई सारी चर्चाएं या संगोष्ठियां करते होंगे। लेकिन पूर्ण रूप से देखा जाए, जो ओवरऑल जो पिक्चर सामने आती है, जैसे कि आपने अपने पिछले कई जो हमारे साथ चैट शोज हुए उसमें आपने बताया कि परमात्मा शिव का जो मुख्य कर्तव्य है इस धरा पर आने का वह है पतितों को पावन करने का, यानी सफाई करने का। तो मेरे मन में ये प्रश्न आता है कि जब कोई शिव भक्त प्रति वर्ष महाशिवरात्रि पर्व को मनाता है बड़े ही सही तरीके से, सही ढंग से, विधिवत जिसे कहते हैं, तो क्या उसके पाप कट जाते हैं?
नहीं, क्योंकि सिर्फ वो कर्म कांड तक ही सीमित रह जाता है। इसलिए अगर वो कर्म कांड करते हुए उसके आध्यात्मिक रहस्य को जान करके उस श्रद्धा भावना से पूजा पाठ करे तो उसको अधिक फल की प्राप्ति हो सकती है।
तो फिर मैं इसी संदर्भ में आपसे पूछती जाना चाहूंगी कि जो ये दूध चढ़ाते हैं जो मिलावट वाला होता है आजकल, तो यानी कि उसके अंदर पानी भी मिला होता है, या फिर कहें कि बेलपत्र चढ़ाते हैं, अक के फूल जिनसे बिल्कुल खुशबू नहीं आती, तो शिव जिन्हें हम परमपिता परमात्मा कहते हैं उनके ऊपर अच्छे फूल क्यों नहीं चढ़ाए जाते? ये सब, इस सब के पीछे क्या रहस्य है, आप हमें बताइए।
तो जैसे आपने कहा कि दूध चढ़ाते हैं वो भी पानी मिला हुआ, उसका कारण क्या है? जैसे आज भगत जन, हंसी की बात है वैसे तो, ये रोज आरती में गाते हैं कि प्रभु जी तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। लेकिन आज जो परिस्थिति है उसके अनुसार मेरा तो मेरा है ही, लेकिन जो तेरा है वो भी मेरा है
जी।
तो मेरे तन के कारण से जो मिलावट आ गई है मनुष्य मन के अंदर, उसका प्रतीक क्या किया उन्होंने कि दूध के अंदर पानी मिला करके लस्सी के रूप में चढ़ाना शुरू कर दिया। जबकि ये इस प्रकार के भाव को लेकर के चढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन वास्तव में परमपिता परमात्मा शिव जो हम सबको इस समय ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान का प्रतिदिन जब हम सिमरण करते हैं, स्मृति में लाते हैं, ज्ञान पर लाते हैं, जैसे परमात्मा शिव ने हमें ये स्मृति दिलाई कि आप एक आत्मा हो, आप शांत स्वरूप हो, आप परम धाम से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट प्ले करने आए हो, मैं आया हूँ तुम सबको वापस ले जाने के लिए, मैं आया हूँ तुम सबको पवित्र बनाने के लिए। तो जब हम बार बार अपने मन के अंदर परमात्मा शिव के ज्ञान का सिमरण करते, ज्ञान की एक एक पॉइंट को रिपीट करते हैं, अर्थात हम पॉइंट जल के रूप में चढ़ाते हैं, जल की बूंद बूंद,
जी हाँ, वो जो लोटी दिखाते हैं जिसके अंदर से एक एक बूंद जो निकल रही होती है वो किसका प्रतीक?
वो इसी बात का ही प्रतीक,
ज्ञान जल। ज्ञान जल से हम सदा
बुद्धि रूपी मटके के अंदर ज्ञान का जो जल हमारे पास है उसको
पकता रहना चाहिए।
हाँ
जी। तो अब हम जानना चाहेंगे दूसरी बात कि ये जो अक के फूल चढ़ाए जाते हैं इसके पीछे क्या रहस्य?
आप ये देखेंगे कि लोग जब शिव और शंकर को एक मान करके चलते हैं तो शंकर का नीलकंठ भी दिखाते हैं कि उनका गला जो है नीला नीला है और उन्होंने विष पान किया, ऐसा कहते हैं। तो वास्तव में जो अक दतुरे के फल फूल हैं वो विषैलेपन के प्रतीक हैं। संगम युग पर जब परमात्मा शिव का दिव्य अवतरण हुआ, परमात्मा शिव ने मनुष्य आत्माओं को ये आदेश दिया कि तुम आत्माओं के अंदर जो काम क्रोध विकारों का विष है वो मुझे दे दो, वो मैं लेने के लिए आया हूँ। लेकिन हम वो तो नहीं दे सके, रीति रसम के तौर पर हमने अक दतुरे के फल फूल चढ़ाने शुरू कर दिए। तो वास्तव में काम विकार रूपी विष को परमात्मा शिव को दे देना, या दूसरे अर्थों में कहें कि परमात्मा शिव की आज्ञा का पालन करना, पवित्र जीवन को व्यतीत करना ही वास्तव में अख का फूल काम के रूप में परमात्मा शिव को दे देना है।
और महाशिवरात्रि पर्व पर जागरण करना या जगे रहना या परमात्मा शिव की स्तुति करना या फिर उपवास रखना, इनका भी काफी प्रचलन है। लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो एक शिव भक्त को सच्चाई से कैसा उपवास रखना चाहिए और किस प्रकार से जागरण करना चाहिए, ये आप हमें अवश्य बताएं।
उपवास शब्द का अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो उप प्लस वास, अर्थात हमारा मन और हमारी बुद्धि परमात्मा शिव के पास ऊपर परम धाम में वास करे, अर्थात रहे। एक अर्थ तो ये है,
जिसे हम सत्संग भी कह सकते हैं, क्योंकि सत्य का संग सदा मन बुद्धि।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। दूसरा उपवास जो आज शिवरात्रि पर लोग करते हैं व्रत के रूप में कि सारा दिन उन्होंने कुछ खाना नहीं है या एक समय ही खाना है, वास्तव में परमात्मा शिव इस समय हमें आदेश देते हैं कि हे मनुष्य आत्माओं, तुम विकारों से बचने का व्रत लो। सारा दिन के अंदर ये स्मृति में रहे कि मुझे शांत रहना है, मुझे आज मधुर बोल बोलने हैं, मुझे आज सारा दिन मुस्कुराते रहना है। इस प्रकार के छोटे छोटे व्रत हमको करने के लिए ईश्वर संकेत दे रहे हैं, लेकिन हम उनके उन संकेतों की ओर ना जा करके स्थूल रूप का व्रत, जो आप सोचो क्या कोई बाप अपने बच्चे को ये कहेगा कि तुम सारा दिन मेरे लिए भूखे रहो?
जी नहीं।
क्या ये बात कोई जचती है?
नहीं।
इसलिए हम परमात्मा के बताए गए उस सूक्ष्म रहस्य को तो समझ नहीं पाए, लेकिन स्थूल रूप में हमने व्रत उपवास रखना शुरू कर दिया। और दूसरा, आपको ये भी मालूम हो कि शिवरात्रि पर जो व्रत रखा जाता है उसे महाव्रत कहा जाता है। तो जब परमात्मा शिव संगम युग पर अवतरित हुए, उन्होंने मनुष्य आत्माओं को पावन बनाने के लिए जो सबसे बड़ा महाव्रत अपनाने के लिए कहा, वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। आप सोचोगे घरग्रस्त में रहते हुए ये बात कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि तो
निवृत्ति मार्ग, जी
उन्होंने निवृत्ति मार्ग को अपनाया, लेकिन घरग्रस्त में रहते हुए ये कैसे पॉसिबल है? जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए अगर न्यारा प्यारा रह सकता है, तो घरग्रस्त में रहते हुए कैसे नहीं ये हो सकता? सबसे पहली बात, अगर हमें ये समझ में आ जाए कि इस प्रकार का आदेश देने वाला है कौन, स्वयं भगवान ईश्वर परमात्मा अल्लाह, जिसको पाने के लिए हमने जन्म जन्मांतर भक्ति मार्ग के अंदर इतनी तीर्थ यात्राएं की, व्रत उपवास किए, नियम रखे, वो प्रभु मुझे आदेश दे रहे हैं कि मीठे बच्चे मेरी खातिर इस अंतिम जन्म में, मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ, पावन बनाने के लिए आया हूँ, मेरी खातिर पवित्र बनो, योगी बनो। क्योंकि योगी हम बन ही तभी सकते हैं जबकि पवित्रता रूपी व्रत को अपने जीवन में अपनाएंगे।
पूनम बहन जी, व्रत के विषय में जो आज आपने हमें बात बताई कि ये छोटे छोटे व्रत जिसके लिए कि किसी व्यक्ति को समय मुहूर्त की भी जरूरत नहीं है, या कोई कोई एक मतलब कोई एक नया विशेष दिन हो उसकी भी जरूरत नहीं है, ये जो बात आपने बताई ये बहुत अच्छी, और ये व्रतों की तो आवश्यकता है, और जो महाव्रत की आपने बात बताई वो भी बिल्कुल बिल्कुल जचती है। जो आपने कहा कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर अब भी आप पवित्र रह सकते हैं, क्या ये बात रियली में प्रैक्टिकल है? क्योंकि इसके लिए काफी शक्ति चाहिए।
हाँ,
तो ये शक्ति कहाँ से मिलेगी?
पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ने से, जैसे जैसे हम मनन चिंतन करते हैं, सिमरण करते हैं कि मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, तो पवित्रता के प्रकंपन लाइट होने के कारण से ऊपर की ओर जाते हैं और परमात्मा शिव से अटैच हो जाते हैं और रिस्पांस में कई गुना पवित्रता की शक्ति हमें मिलती है, जिससे हमारा मन स्वयं ही स्वयं से तैयार हो जाता है कि मैं परमात्मा की इस आज्ञा का पालन करूं और परमात्मा शिव से स्वर्ग का राज्य भाग्य प्राप्त कर लूं।
आप ये कैसे कह सकती हैं कि यही एकमात्र उपाय है पवित्र बनने का? ये कैसे कह सकते हैं आप?
क्योंकि अब तक जितने भी मेडिटेशन योग सिखाए जाते हैं उसमें विशेष रूप से फिजिकल एक्सरसाइज को ही, हठ योग प्राणायाम एक्सरसाइज को ही स्थान दिया जाता है, जबकि गीता के अंदर जो भगवान ने योग सिखा रखा है वो राजयोग ही है, जिसके द्वारा ही मनुष्य के पाप कर्मों का अंत होता है, जिसको सीखने और अभ्यास करने से ही। तो ये वही वर्तमान समय चल रहा है जबकि स्वयं गीता ज्ञानदाता परमात्मा शिव स्वयं राजयोग सिखा करके हम मनुष्य आत्माओं को पावन बनने का सरल तरीका सिखा रहे हैं।
अर्थात आप ये कहना चाह रही हैं कि परमात्मा शिव ही पवित्रता के सागर हैं या स्रोत हैं?
बिल्कुल,
प्रकंपन से या वाइब्रेशन से आत्मा पावन होती है।
बिल्कुल
जी,
परमात्मा शिव ही स्रोत है, पावर हाउस है वो।
तो यानी कि आप ये भी कहना चाह रही हैं कि वे ही पतित पावन है, यानी जो हम बोलते हैं कि श्री राम के विषय में हम कहते हैं कि सीता राम पतित पावन सीता राम, तो यानी वो
रघुपति राघव राजा राम।
हाँ जी,
राम तो शिव को भी कहा गया।
हाँ,
एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा।
हाँ, चार राम यानी कि।
बिल्कुल
जी जी,
तो जो तीनों से न्यारा राम है, निराकार शिव परमात्मा ही है, वो ही पावन बनाने का कार्य वर्तमान समय कर रहे हैं।
तो वे ही पतित पावन है, पतितों को पावन करने वाले वे ही शिव परमपिता परमात्मा।
बिल्कुल
जी,
पतित पावनी ज्ञान गंगाएं ही हैं साथ साथ में, जो परमात्मा शिव ज्ञान सागर के साथ जुड़ी हुई हैं, सहयोगी हैं उनके कार्य में।
ज्ञान सागर तो समझ आ गया कि आप शिव पिता को कह रही हैं, ज्ञान गंगाएं कौन है फिर? ये
संगम युग पर जिन मनुष्य आत्माओं ने, उसमें भी विशेष रूप से बहनों ने, माताओं ने, कन्याओं ने परमात्मा शिव को पहचाना, उनके दिव्य कर्तव्य को समझा और उनके कार्य अर्थ स्वयं के जीवन को बलिहार कर दिया, वो ही ज्ञान गंगाएं कहलाई। उन्होंने ही परमात्मा शिव के ज्ञान को जगह जगह मनुष्य आत्माओं को ईश्वरीय संदेश के रूप में दिया, इसलिए वो ज्ञान गंगाएं कहलाए।
आप अभी हमें दे रहे हैं।
बिल्कुल,
और जैसे कि कहा,
मुझे गर्व है इस बात का कि मैं परमात्मा शिव की ज्ञान गंगा हूँ।
जी बिल्कुल, हमें भी इस बात का बहुत बहुत ही खुशी है कि हम ऐसी ज्ञान गंगा से ज्ञान ले भी रहे हैं। तो यानी आप ये कहना चाह रही हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्रांतिकारी बात है कि जो नारी है वो नर्क का द्वार नहीं है,
वो स्वर्ग का द्वार है।
हाँ जी,
परमात्मा शिव हमें ये अब समझा रहे हैं।
जी, ये तो बहुत ही ऊंची बात आप हमें बता रहे हैं, और लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि नारी को फिर वैसा स्वरूप भी बनाना पड़े, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर एक टाइटल लेना है तो उसके लिए उतनी मेहनत भी करनी होती है।
बिल्कुल
जी, तो अभी आप हमें पहले बता रही थी कि जागरण जो है शिव भक्त करते हैं, तो उसके पीछे सत्य रहस्य क्या है? जागरण किन बातों से करना है, या क्या है जागरण में करना क्या है?
जागरण से संबंधित जो स्टोरी हम शिवरात्रि के संबंध में सुनते हैं, शायद आपने भी सुनी होगी कि शिकारी एक बार जंगल में रास्ता भटक गया था, जिस पेड़ पर वो बैठा हुआ था, शिव लिंग की प्रतिमा नीचे थी और उस पर वो पत्ते सारी रात बैठा हुआ चढ़ाता रहा।
शिकार के उसमें बैठा था।
हाँ, हिरण के कहानी आपने सुनी होगी। तो लोग तो इसीलिए ही शिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो है जागरण करते हैं, लेकिन वास्तव में और जागरण में वो चार बार पूजा भी करते हैं।
जी जी,
तो जागरण वास्तव में किस बात का है? जागृति अपने अंदर लाना ही सच्चा सच्चा जागरण करना है। हम मनुष्य आत्माएं देह अभिमान के कारण अज्ञानता की गहरी नींद में सो रही हैं। तो सोने से जगना अर्थात सत्य के प्रति अपने अंदर जागृति लाना ही जागरण करना है।
यहाँ पर मुझे एक और शास्त्रों से, रामायण से मुझे एक कैरेक्टर याद आ रहा है, कुंभकर्ण। तो यानी यही क्या कुंभकर्ण है, जो कि
जो ज्ञान सुनकर के सो जाए, या जो सोए हुए हैं और ज्ञान के ढोल बज रहे हैं लेकिन सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं।
क्योंकि देखिए छह महीने कोई व्यक्ति सोता रहे ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता।
बिल्कुल।
तो एक्चुअली तो सोना यानी ज्ञान को, ज्ञान आपको समझ भी आ रहा है या आपको सुनाया भी जा रहा है या आपको पता भी है कि सही बात क्या है, क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप नहीं कर रहे हैं, तो उसको शायद कुंभकर्ण।
हाँ,
कुंभकर्ण शब्द का अर्थ अगर आप हमें बताएं, कुंभकर्ण यानी
कुंभ मटके के लिए कहा जाता है। तो बुद्धि रूपी मटके में भगवान ज्ञान जल दे रहे हैं जिससे बुद्धि दिव्य बन रही है मनुष्यों की, लेकिन जो मनुष्य उस ज्ञान जल को लेना ही नहीं चाहते, अपनी बुद्धि को दिव्य बनाना ही नहीं चाहते, जो टोटल मेटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, भौतिकवादी हो चुके हैं या पलायनवादी वृत्ति वाले हो चुके हैं, तो वो इसी कैटेगरी में ही लगभग आ जाते हैं।
एक काम से जाकर दूसरे काम से
निकल जाता है।
और महाशिवरात्रि पर्व से जुड़े हुए वैसे तो कई कर्म कांड हैं, फिर जैसे कहा जाता है कि इस दिन
बेर भी चढ़ाते हैं, भगत गाजर भी चढ़ाते हैं,
हाँ, ये सब भी चढ़ाते हैं।
हाँ, तो इसका
पीछे क्या है,
इसका भाव भी यही है। बेर को आप देखोगे उसकी जो शेप दिखाई गई है ओवल शेप में दिखाया गया है, तो आप देखोगे शिवलिंग की प्रतिमा के साथ साथ शालिग्राम भी होते हैं, गोल गोल बट्टियों के रूप में, पिंडी के रूप में के साथ रखे हुए होते हैं। तो जो शालिग्राम वास्तव में आत्मा का नाम शालिग्राम और परमात्मा का दिव्य अलौकिक नाम शिव है। जो शालिग्राम रूपी आत्माएं शिव परमात्मा को संगम युग पर पहचान जाती हैं और अपने आप को बलिहार कर देती हैं, सरेंडर हो जाती हैं उसके कार्य के लिए, उन्हीं की यादगार के रूप में बेर दिखाया गया है।
यानी वो जो काशी कलवट का जो
काशी कलवट अलग बात है, काशी कलवट अलग बात है। काशी कलवट तो उस समय की बात है जबकि भगत शिव का दर्शन करना चाहता था और दर्शन नहीं होता था। तो काशी के अंदर एक कुआं बना हुआ है जिस पर एक आरी लगी हुई होती है और उसके नीचे शिवलिंग की प्रतिमा, तो भगत ऊपर से कूदता और उस आरी से कटकर शिव पर सरेंडर हो जाता है।
लेकिन शिव परमात्मा इस समय हमारे शरीर की बात नहीं कर रहे परंतु हमारे अंदर जो मैं है
उसको, हाँ, उसको बलि चढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो काशी कलवट खाने से भगत ये मानते कि शिव के दर्शन हो जाते, लेकिन वास्तव में इस समय हम जब देह के अभिमान को छोड़ देते हैं, देही अभिमानी स्थिति में रहते, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, तो निरंतर हम परमात्मा शिव के सानिध्य का अनुभव कर सकते हैं।
बहन जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि कांवर जो लोग कांवर लेकर जाते हैं, हमने देखा है कि नंगे पांव, और सावन के महीने में कहा जाता है कि जाते हैं नंगे पांव होते हैं और उन्हें अपनी कोई ऐसी सुध-बुध नहीं होती, कांवर उन्होंने लटकाया हुआ होता है और कहते हैं कि उसमें एक लोटा होता है या मटका होता है जिसमें गंगा जल होता है और उनकी एक जैसे शिव भगवान से एक प्रतिज्ञा होती है कि जब तक मैं ये आपको चढ़ा ना दूं तब तक मैं शांति या चैन नहीं लूंगा। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है, देखिए आज के जो एजुकेटेड वर्ल्ड है उसके अंदर इस पूरी प्रक्रिया को आमतौर पर, वैसे मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन ये न्यूसेंस की तरह दिखाई देती है, क्योंकि देखिए जब ये लोग चल रहे होते हैं तो जिस रास्ते से जा रहे होते हैं वहां पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, फिर जिस प्रकार से जा रहे होते हैं, कोई कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग बीड़ी सिगरेट भी पी रहे होते हैं और कुछ लोग अब व्यवहार भी उनका वैसा नहीं होता कि जैसे कि एक भक्त का होना चाहिए। तो क्या सत्यता क्या है, क्योंकि जरूर सत्यता से विमुख है तभी तो वो स्वरूप नहीं आ रहा है, तो सत्यता क्या है इसके पीछे, गंगा जल कौन सा गंगा जल है ये और इससे प्राप्ति क्या होती है, जो लोग इतना मीलों पैदल चलकर जाते हैं क्या प्राप्ति होती है?
सर्वप्रथम तो आपको यही बताना चाहूंगी कि गंगा जल की जो तुलना है वो सत्य ज्ञान से की गई है।
जी जी।
जो आज मनुष्य आत्माएं भ्रमित हैं वो पानी के जल को जो पहाड़ों से निकलता हुआ आ रहा है उसे गंगा जल समझ डुबकियों पर डुबकियां लगाते हैं कि हमारे पाप कर्म विनाश हो जाए। अगर इस प्रकार से मनुष्यों के पाप कर्म गंगा के पानी से विनाश होने शुरू हो जाएं, तो सचमुच आज संसार को बहुत समय पहले से ही स्वर्ग बन जाना चाहिए था।
आपने एक बहुत अच्छी बात बोली जो मुझे रिमाइंड कराती है कि यानी ये बात सभी मानते हैं कि हमें अपने पाप कर्मों का विनाश करना है जिसके लिए वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, यानी ये बात सभी मानते हैं कि पाप कर्म हम किए हैं।
बिल्कुल,
बहुत अच्छी बात
है। रोज आरती में भी तो गाते हैं भजन, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा
जी।
तो इसका मतलब पाप आत्माएं तो हम बन चुके हैं, ये तो हमने स्वीकार कर ही लिया है, लेकिन उसको मिटाने का हटाने का जो हमारा आज तरीका स्थूलता की ओर ज्यादा जाता जा रहा है, उससे जितनी जल्दी प्राप्ति हमको होनी चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम भूल कर रहे हैं, तो हमें उन्हीं भूलों से उबारने के लिए, सत्य ज्ञान देने के लिए ही ज्ञान सागर परमात्मा शिव समझाते हैं कि हे मनुष्य आत्माओं, जो सत्य ज्ञान मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, जैसे गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो मैं सुना रहा हूँ वो सुनो, जो अब तक सुना हुआ है उसको भूलते चले जाओ। तो इसी प्रकार से परमात्मा शिव हमें ये समझा रहे हैं कि हे आत्माएं, तुम सबका आदि अनादि स्वरूप ही पवित्र स्वरूप था, लेकिन स्वयं को भूल जाने के कारण से, मुझ परमात्मा को भूल जाने के कारण से, देह के अभिमान में आते आते, विकारों के वशीभूत होते होते तुम पाप आत्माएं बन गए हो। अब मैं आया हूँ तुम्हारे पाप कर्मों को समाप्त करने के लिए, शुद्ध बनाकर घर वापस ले जाने के लिए। इसलिए प्रतिदिन ज्ञान गंगा में स्नान करो। जो ये कावड़ चढ़ाते हैं शिव रुद्र अभिषेक के रूप में, उसके पीछे भी भक्तों का यही भाव होता है कि हमको जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए या पाप कर्मों से हम मुक्त हो जाए।
इसमें रुद्र अभिषेक का अर्थ क्या हुआ?
रुद्र पर अर्थात शिव परमात्मा को रुद्र भी कहा गया है, उन पर जो भगत जल चढ़ाते हैं, जल से अभिषेक करते तिलक देते हैं, वास्तव में इस समय परमात्मा शिव जब हमको ये ज्ञान देते कि तुम आत्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप हो और मैं तुम्हारा पिता भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, तो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप की स्मृति दिलाने के कारण से ही आत्माएं इस समय स्थूल रूप में शिव का रुद्र अभिषेक करती हैं। कावड़ की जो शिवरात्रि आती है, कावड़ चढ़ाने की श्रावण मास में, उसमें
जी। मुक्ति धाम के विषय में आप बता रहे थे।
हाँ,
मुक्ति के विषय में बता रहे।
हाँ, क्योंकि इस समय मनुष्य आत्माएं पाप कर्म करते करते बंधन में ऐसा बंध चुकी हैं कि बस वो समझते हैं कि अब ये संसार जीवन जीने लायक रह ही नहीं गया है, दुख अशांति से भरा हुआ ये संसार, ये जीवन अब हमें नहीं चाहिए, प्रभु मुक्त करो मुक्त करो। तो इसीलिए मुक्ति जो है वो मनुष्य तो सोचते हैं कि बिल्कुल हम जन्म मरण में ही नहीं आए, छूट जाए,
शरीर से ही मुक्त होना चाहते।
हाँ, शरीर से मुक्त
दोबारा आना नहीं चाहते,
हाँ। लेकिन परमात्मा शिव समझाते कि जब आत्मा है ही एक अभिनेता, है ही एक्टर, तो उसको एक्टिंग करने के लिए तो आना पड़ेगा। समय जब चक्र के रूप में है, चक्र निरंतर चलता रहता है चलता रहता है, लेकिन थोड़ा सा समय ऐसा अवश्य आता है उस समय चक्र के अंदर, जबकि परमात्मा शिव स्वयं मनुष्य आत्माओं को पाप कर्मों से मुक्त करके मुक्ति धाम में लेकर के जाते हैं।
रेस्ट पीरियड होता है, रेस्ट हम कर सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल,
फिर वापस तो आना ही पड़ेगा चक्र के अंदर।
बिल्कुल, तो जो मनुष्य आत्माएं पहले पहले समय चक्र के अंदर आती हैं मुक्ति धाम से, मनुष्य जीवन में होते हुए भी वो जीवन मुक्त कहलाती हैं, अर्थात उनके जीवन में कोई भी बंधन नहीं होता, क्योंकि सत्ययुग और त्रेता युग में मनुष्य आत्माओं का जीवन संपूर्ण निर्विकारी होता है, जबकि द्वापर युग से मनुष्य आत्माओं का जीवन विकारों के कारण से, विकारों के वशीभूत होते होते पाप वाला जीवन बनना शुरू हो जाता है।
जहाँ तक राजयोग की प्रक्रिया का सवाल है, जिसके बारे में आपने हमें बताया कि अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना, जिससे आपके जीवन से विकार और सभी प्रकार के अवगुण मिटे,
बिल्कुल,
तो इस राजयोग की प्रक्रिया से मुक्ति प्राप्त होती है कि जीवन मुक्ति, या दोनों ही प्राप्त होती है?
दोनों ही प्राप्त होती है, मुक्ति भी और जीवन मुक्ति भी, क्योंकि सबसे पहले तो राजयोग के अभ्यास से वर्तमान समय हम अपने आप को बंधनों से मुक्त महसूस करते हैं। जैसे मान लो किसी ने कोई बात मुझे ऐसे कही कि मुझे दुख महसूस होने लग गया, लेकिन अगर मैंने राजयोग का अभ्यास किया कि मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, सुख के सागर परमात्मा से सुख की किरणें मैं प्राप्त कर रही हूँ, मैं सुखी हो रही हूँ, मैं दुख के बंधन को भूलती जा रही हूँ, तो उसी समय तुरंत हमको प्रत्यक्ष फल खुशी के रूप में प्राप्त होना शुरू हो जाता है, और बंधन से मुक्त अवस्था का जब आत्मिक स्थिति में हम स्थिर हो जाते हैं, आत्मा अपने आदि अनादि स्वरूप सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता का अनुभव करने लग जाती है राजयोग के अभ्यास से, तो उस समय टेम्परेरी हमको मुक्ति की अवस्था का अनुभव होता है। लेकिन लंबे समय के इस अभ्यास को करते करते जब मैं आत्मा शरीर को छोड़ करके मुक्ति धाम में जाऊंगी तो मुझे कोई भी बंधन संसार का अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकेगा, खींच नहीं सकेगा। ऐसी मुक्ति की स्थिति का अनुभव परमात्मा शिव इस समय भी हमें कराते हैं और ऐसा अभ्यास चलते चलते सत्युग त्रेता युग में परमानेंट जीवन मुक्ति के रूप में बना ही रहता है। इसलिए देवी देवता जीवन मुक्त अवस्था वाले विदेही गाए गए हैं।
पूरम बहन जी, ये जो चर्चा चल रही है, हम तो चाहते हैं कि ये चलती रहे और हम आपसे और सुनते रहें, क्योंकि यहीं पर सुनते सुनते ही ऐसा लग रहा है कि महाशिवरात्रि पर्व को हम सही मायने में मना रहे हैं, परंतु समय की जो मर्यादा है उसका भी पालन करना होता है। आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने हमें इतना जो विस्तार से और बिल्कुल गुह्य बातें हमें बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम शांति।
प्रिय दर्शकों, मेरे पास तो कुछ शब्द नहीं है अभी कहने के लिए, क्योंकि हमने इतनी अच्छी अच्छी बातें अभी सुनी हैं और मैं समझती हूँ कि महाशिवरात्रि का पर्व अगर हम सही मायने में सच्चे रूप से मनाना चाहते हैं, जिससे कि हमें उससे प्राप्ति भी हो, क्योंकि कोई चीज अगर हम सिर्फ नेम सेक के लिए मनाएं, नाम के लिए मनाएं, तो हम सभी समझेंगे कि उसका हमें फल नहीं मिलेगा। तो जो बातें आज हमने सुनी, अगर हम अपने जीवन में उसी प्रकार से भले उस कर्मकांड को हम करें लेकिन समझ के करें, अवेयरनेस के साथ करें, तो हमें ढेरों प्राप्तियां या मनोकामनाएं जो है हमारी अवश्य ही पूर्ण होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।